नवंबर 2018 मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। मार्क ज़करबर्ग अपने ऑफिस में बैठे अपने एक लेफ्टिनेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए। ये साल बहुत दर्दनाक रहा है। ज़करबर्ग को एक शक्की सेनेट के सामने सुनवाई करनी पड़ी है। उन्होंने फेसबुक की डेटा प्राइवेसी, रूसी चुनाव में हस्तक्षेप और दुष्प्रचार के प्रसार के बारे में उनसे पूछताछ की। फेसबुक पर जनता कम हो रही है और वो जिधर भी मुड़ते हैं उधर कॉम्पिटिशन मौजूद होता है। सुनने में आया कि टिकटॉक के डाउनलोड सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, फेसबुक, स्नैपचैट और यूट्यूब से भी ज्यादा हैं। मार्क लासो लाइव है, ठीक है, मुझे नंबरों की अपडेट देते रहना। लासो फेसबुक की कोशिश है कि वो टिकटॉक को सीधे टक्कर दे। ये पूरी तरह से टिकटॉक का कॉपी है। यूजर्स इस नए ऐप पर 15 सेकंड के वीडियो अपलोड कर उन पर म्यूजिक सेट कर सकते हैं। म्यूजिक की वजह से टिकटॉक की लोगों को अपनी ओर खींचने की ताकत देखने के बाद ज़करबर्ग ने बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल्स के साथ लाइसेंसिंग डील शुरू कर दी। अब यूजर्स लासो के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट में गाने जोड़ सकते हैं। और चूंकि वो पहले भी ये झेल चुके हैं, इसीलिए ज़करबर्ग चुपचाप लासो को लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले कि यूजर्स पब्लिकली किसी भी समस्या के बारे में बात करना शुरू करें, इंजीनियर पहले उसे ठीक कर देंगे। एक घंटे बाद ज़करबर्ग को उनके डेप्यूटी का कॉल आता है।
मार्क, नंबर्स कुछ खास नहीं लग रहे।
क्या हो रहा है?
शायद ही कोई उसे डाउनलोड कर रहा है।
फरवरी 2019 तक यूएसए में केवल 70,000 यूजर्स ने लासो को डाउनलोड किया। उन्हीं 3 महीनों के दौरान टिकटॉक के 40 मिलियन डाउनलोड हुए। ज़करबर्ग के लिए ये एक अपमानजनक हार, और टिकटॉक की तो बस ये शुरुआत है। वंड्री से मैं हूं संदीप आर्य और ये है बिजनेस वॉर्स। पिछले एपिसोड में बाइट डांस के फाउंडर जोंग यिमिंग ने एक शंघाई बेस्ड वीडियो ऐप म्यूजिकली को अपने साथ मिलाकर टिकटॉक को और बढ़ाया, और इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रम और माइक क्रीगर ने फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग के साथ माथापच्ची के बाद अपनी बनाई कंपनी को छोड़ दिया। 2019 की शुरुआत तक ज़करबर्ग ने एक हार देख ली है। उनका कॉपीकैट ऐप नाकाम हो गया और टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस की वैल्यू 75 बिलियन हो गई है। टिकटॉक फेसबुक से कुछ गंदी चालों का अनुमान लगा रहा है, लेकिन एक और दुश्मन है जिस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, अमेरिकन रेगुलेटर्स। ये चौथा एपिसोड है हिटमेकर। फरवरी 2019, क्लीवलैंड, ओहायो। एक 13 साल की लड़की अपने बेडरूम में बैठी एक टीनेज लड़के का टिकटॉक वीडियो देख रही है। उसने स्वेट्स पहने हैं और यी जूस लेबल लगा सोडा पी रही है। एक बैंजो के साथ एक आदमी की आवाज एक घोड़े को एक पुराने शहर की सड़क पर ले जाने के बारे में गा रही है। कुछ सेकंड बाद म्यूजिक हिप हॉप बीट में बदल जाता है। वीडियो उसी लड़के पर कट जाता है जो अब एक काउबॉय की तरह कपड़े पहने हुए। उसने एक हैट, वेस्ट और चैप्स पहने और वो एक मॉक लाइन डांस करता है और घोड़े की सवारी करने का नाटक करता है। जब वो वीडियो खत्म होता है तो दूसरा अपने आप चलना शुरू हो जाता है। ये वही गाना है लेकिन एक अलग टीनेजर के साथ जो एक काउबॉय में बदलने से पहले गा रहा है। वो स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से को देखती है। आर्टिस्ट लिल नास एक्स है। वो जो भी हो, लड़की सोचती है, और गाने का नाम ओल्ड टाउन रोड वो उठाती है और अपनी अलमारी खंगालने लगती है। वो इस ओल्ड टाउन रोड क्लिप में अपना खुद का वीडियो सेट करने जा रही है। सबसे पहले उसने कोई वेस्टर्न कपड़ा ढूंढा होगा। ये जूस वाला चैलेंज वायरल हो जाता है क्योंकि दुनिया भर के टीनेजर्स काउबॉय में बदलने के लिए शामिल हो जाते हैं। इस गाने पर सेट किया गया सिली मीम बिलियन व्यूज देगा। इससे पहले लिल नास एक्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन टिकटॉक पर ओल्ड टाउन रोड शुरू होने के बाद बिलबोर्ड चार्ट में यह गाना लगातार 19 हफ्तों तक सबसे ऊपर रहा। इसने नंबर 1 पर रहने के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टिकटॉक अब सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप नहीं है, अब ये म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ताकत की तरह गिने जाने वाला है। असल में ये एक हिट मेकर है, लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं।
सबसे पहले फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने म्यूजिकली पर आरोप लगाया कि ये ऐप जिसे ByteDance द्वारा खरीदा और TikTok में मिलाया गया है, इसने नाबालिगों से अवैध रूप से व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठे की। TikTok को $5.7 million का जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन TikTok जैसी कंपनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक प्राइवेसी का सवाल है, इस नए जमाने के लोगों को इतनी परवाह भी नहीं है। जुर्माना हल्का सा सिरदर्द है, लेकिन वैसा माइग्रेन नहीं जो ज़करबर्ग को होने वाला है। March 2019, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, फेसबुक हेडक्वार्टर्स। ज़करबर्ग अपने डेस्क पर बैठे कुछ इंस्टाग्राम फिगर्स को रिव्यू कर रहे हैं, जब उन्हें एक कॉल आता है।
मां की परेशानी है।
क्या बात है?
पासवर्ड लीक होना। ब्रायन क्रेब्स इसके बारे में लिख रहा है।
ज़करबर्ग तेजी से सांस भरते हैं। ये वाकई बुरी खबर है। ब्रायन क्रेब्स सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ब्लॉग के साथ एक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टर है, और उसने अभी अभी कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे ज़करबर्ग दबाने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक है, हम एक बयान तैयार करेंगे, लेकिन हमें अपने स्टाफ को प्रेस से बात करने से रोकना होगा।
ज़करबर्ग फोन काटते हैं। ये एक शर्मनाक 9 सिखियों वाली गलती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के करोड़ों पासवर्ड इनक्रिप्टेड के बजाय प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किए गए थे, जिससे उन्हें चोरी करना बहुत आसान हो गया। जब उन्हें कुछ महीने पहले इसके बारे में पता चला, तो ज़करबर्ग ने अंदर ही अंदर रिव्यू का हुक्म दिया, लेकिन इस सेंध को टॉप सीक्रेट बनाकर रखा। अगले दिन सेंध और कवर अप की कहानी लाइव हो जाती है। ज़करबर्ग आर्टिकल को स्क्रोल करते हैं। ये बुरा है, सच में बहुत बुरा है। लाखों फेसबुक यूजर्स के अकाउंट के पासवर्ड उनके पास प्लेन टेक्स्ट में स्टोर थे, और उन्हें हजारों फेसबुक एम्प्लॉइज द्वारा खोजा जा सकता है। इनमें से कुछ मामले 2012 के हैं। ज़करबर्ग अपने PR हेड को फोन करते हैं।
हम एक बयान तैयार करना होगा अभी।
इंस्टाग्राम लाखों यूजर्स को सूचित करने के लिए एक ईमेल भेजता है कि उनके पासवर्ड एक्सपोज हो गए। वो इस बात से नाराज हैं कि जैसे ही महीनों पहले उन्हें समस्या का पता चला, इंस्टाग्राम ने उन्हें नहीं बताया। अब तक तो इंस्टाग्राम को फेसबुक की रेप्यूटेशन हिट से पनाह मिल रही है, लेकिन अब और नहीं। अब यह बात फैल रही है कि टेक दिग्गज अपने यूजर्स की प्राइवेसी की परवाह नहीं करता, केवल मुनाफा। इंस्टाग्राम की खुशकिस्मती यह है कि टिकटॉक भी हॉट सीट पर है। April 2019, चेन्नई, भारत। मद्रास हाईकोर्ट की सुंदर पुरानी सी लाल इमारत में एक शोर शराबे से भरा कोर्टरूम। ये कोई हत्या या मारपीट का मुकदमा नहीं है।
नहीं,
दस्तावेज A, B और C में लड़कियों के नाचते हुए और कैमरों में बात करने वाली 11-12 साल की लड़कियों के टिकटॉक वीडियो है। ऐप भारत में बैन हो गया। 240 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड के साथ ये देश अमेरिका के बाद टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट है। बॉलीवुड के म्यूजिकल नंबर टिकटॉक के लिए एकदम परफेक्ट है। लोग लोकप्रिय गानों के साथ डांस करना और लिपसिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन भारतीय अधिकारी इन सबसे नाखुश हैं। जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा है वो है कपड़े, जो बहुत छोटे हैं, और वो इस बात से भी चिंतित हैं कि टिकटॉक के यूजर्स कितने युवा हैं। भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाला कोई बाल सुरक्षा कानून नहीं है, और अधिकारी कम उम्र के यूजर्स को टारगेट करने वाले यौन दरिंदों को लेकर चिंतित हैं। फिर हाल ही में हुई मौतों और चोटों की बाढ़ आ गई, जब लोग टिकटॉक को फिल्मा रहे थे। कोर्ट को हरकत में लाने के लिए काफी है।
ऑर्डर, ऑर्डर।
शोरगुल से भरा कोर्ट रूम शांत हो जाता है। सामने ही केस करने वाले ग्रुप के साथ टिकटॉक के वकील भी बैठे हैं।
ये कोर्ट सरकार को भारत में टिकटॉक के नए डाउनलोड को बैन करने का आदेश देता है। मैं टीवी स्टेशनों के टिकटॉक शो प्रसारित करने को भी बैन करता हूं। टिकटॉक पूरी तरह से बैन होना चाहिए।
टिकटॉक के लिए यह खबर बहुत बड़ा झटका है। मौजूदा यूजर्स अभी भी वीडियो बना सकेंगे और ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन किसी भी नए यूजर को इसे डाउनलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय अदालत ने एप्पल और गूगल को देश के अपने ऐप स्टोर से इसे हटाने के लिए भी कहा है, और वो इसका पालन भी करते हैं। इस एक झटके में टिकटॉक के लिए सबसे बड़े विदेशी बाजार में लगातार बढ़ते रहना असंभव है। जोंग को उनका लेफ्टिनेंट फोन करके ये खबर सुनाता है। वो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सोचने में ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए तुरंत जवाब देते हैं।
हम अदालतों में फिर से लड़ेंगे।
एक लंबा रास्ता होगा। हम भारत से दूर हो सकते हैं, कहीं और ध्यान लगाना चाहिए।
लेकिन जोंग जानते हैं कि भारत एक मिसाल कायम करेगा। ByteDance इस धारणा के खिलाफ लड़ता है कि कोई बुरा असर डालता है, ये तर्क देते हुए कि TikTok पर बहुत कम ऐसा कंटेंट है जो अनुचित है। भारत के लीगल सिस्टम से होते हुए ये मामला अपना काम करेगा और ByteDance को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन TikTok के बिजनेस की पूरी स्ट्रेटेजी युवा यूजर्स के इस सामूहिक रूप से अपनाने पर टिकी हुई है। जैसे ही रेगुलेटर्स ने TikTok पर दबाव डाला, Zuckerberg जोंग पर काबू पाने के लिए नए नतीजों को अपनाने लगे। जुलाई 2019, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, फेसबुक की ऑल हैंड्स मीटिंग। ऑडिटोरियम फेसबुक के एम्प्लॉयज से भरा हुआ है, सभी Zuckerberg को सुनने के लिए उमड़ पड़े। इस सोशल मीडिया दिग्गज के लिए ये एक मुश्किल महीना रहा। फेडरल ट्रेड कमीशन ने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल और प्राइवेसी के उल्लंघन पर $5 अरब का जुर्माना लगाया। उन्हें 2020 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों जैसे कि सेनेट एलिजाबेथ वॉरन के राजनीतिक गुस्से का भी सामना करना पड़ा, जो कहती हैं कि फेसबुक कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसे तोड़ दिया जाना चाहिए। Zuckerberg माइक की तरफ बढ़ते हुए कमरे में एक चिंता का भाव तैर रहा है। जैसे ही वो सवालों के जवाब देते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कि होना ही था, कोई TikTok के बढ़ते दबदबे और फेसबुक के जवाबी हमले के प्लान के बारे में पूछता है। Zuckerberg ने खंखार कर अपना गला साफ किया।
खैर, हमने Instagram में एक्सप्लोर पेज जोड़ा, जो TikTok की तरह ही एक एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। एल्गोरिदम यूजर्स को उनकी पिछली एक्टिविटी के आधार पर नए वीडियो और फोटो उपलब्ध कराता है, और हम इसे इसीलिए बना रहे हैं ताकि एक्सप्लोर पेज ज्यादा स्टोरीज ऑफर करे।
स्टोरीज कैजुअल गायब होने वाली पोस्ट है जो तेजी से लोगों द्वारा Instagram पर कंटेंट कंज्यूम करने का पहला तरीका बन रही है, और वो Instagram को TikTok की तरह दिखने और महसूस कराने का एक तरीका है जिसमें एक रूखा कम पॉलिश किया सा फील होता है। लेकिन जब Zuckerberg ने शेयर किया कि वो कैसे कम्पीट करने का प्लान बना रहे हैं, वो प्रतिद्वंदी ऐप को खारिज भी करते हैं।
TikTok बढ़ रहा है, लेकिन वो इसका प्रचार करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने जो पाया है वो ये कि ऐप का विज्ञापन बंद करने के बाद उनका ऐप असल में उतना मजबूत नहीं है, तो ये स्पेस अभी भी काफी बच्चों जैसा है, और हमारे पास ये पता लगाने का समय है कि हम अभी यहां क्या करना चाहते हैं।
दूसरे शब्दों में, TikTok में अभी दिखावा ज्यादा है और उन्हें हराने के लिए काफी समय, लेकिन Zuckerberg पूरी तरह गलत साबित हुए। TikTok जंगल की आग की तरह फैल रहा है। सितंबर 2019, बीजिंग, चाइना। सुबह हो चुकी है और जियांग अपनी मेज पर पहुंच चुके हैं। उनका मानना है कि अपने एम्प्लॉयज के लिए कड़ी मेहनत का मॉडल बनाना जरूरी है। वो चीन में भी चीजों के लिए एक खास अमेरिकी नजरिया अपनाते हैं। उन्हें जेफ बीजोस का मोटो ऑलवेज डे वन कोट करना बहुत पसंद है। दूसरे शब्दों में, कंपनियों को हमेशा अपने पहले दिन की तरह काम करना चाहिए और रोज खुद को साबित करना चाहिए। इसीलिए भले ही TikTok के अब दुनिया भर में ऑफिस हैं, फिर भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे अभी भी एक छोटा सा स्टार्टअप हो। ये एलेक्स जू है, TikTok के CEO और म्यूजिकली की शुरुआत करने वाले व्यक्ति। कैलिफोर्निया में देर शाम का समय हो गया, इसीलिए जोंग ने सोचा कि ये अर्जेंट होना चाहिए।
यिमिंग, एक समस्या है।
क्या बात है?
गार्डियन ने अभी अपना आर्टिकल पब्लिश किया है, हमने जितना सोचा था उससे भी बुरा।
जोंग रुक जाते, उन्हें पता था कि गार्डियन TikTok के बारे में एक स्टोरी छापने वाला है, क्योंकि ByteDance ने एक टिप्पणी की थी। वो आर्टिकल को ढूंढना शुरू कर देते।
इसमें कहा गया है कि उन वीडियोस को सेंसर करने की हमारी पॉलिसी है जिनमें Tiananmen स्क्वायर और तिब्बत की आजादी का उल्लेख है। वो उन दस्तावेजों का हवाला दे रहे हैं जो लीक होकर उन तक पहुंचे थे।
बीजिंग के अधिकारी इन राजनीतिक मामलों को लेकर बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है। वो उनके बारे में किसी भी बातचीत को उनके अधिकार के खिलाफ चुनौतियों की तरह देखते।
ये ठीक नहीं है, हमें अपना खुद का ब्लॉग पोस्ट डालना होगा।
TikTok हर कीमत पर ऐसी किसी धारणा के बदलने को टालना चाहता है कि उसने हांगकांग में गर्मी के दिनों में राजनीतिक अशांति के दौरान पोस्ट सेंसर किए थे। ये एक आरोप है जो अभी भी घूम रहा है। कंपनी द गार्डियन को बताती है कि लीक हुए दस्तावेज पुराने हैं। इसमें कहा गया है कि मॉडरेटर गाइडलाइंस लिखी हुई थी और फिर उन्हें मिटा दिया गया हांगकांग में चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन से बहुत पहले। TikTok के लिए ये किस्मत की बात है कि एक बार फिर इसके युवा यूजर्स को इस विवाद की भनक तक नहीं लगी। अक्टूबर 2019, ऑरलैंडो के ठीक बाहर विंटर गार्डन, फ्लोरिडा। एक फ्रेशमैन वेस्ट ऑरेंज हाई स्कूल में हॉलवे में अपनी किताबों और फोन पकड़कर चलती हुई बाहर आती है। वो एक व्हाइट बोर्ड पर लगे विज्ञापन के पास से गुजरती है और उसे पढ़ने के लिए रुक जाती है। TikTok पर मशहूर होना चाहते हैं? TikTok क्लब से जुड़े। स्कूल के बाद वो उस क्लासरूम में जाती है जहाँ टिकटॉक क्लब की मीटिंग है। प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन के इंतजार में जूस और चीटोस खाने वाले छात्रों से डेस्क भरी हुई है। वो बैठ जाती है और क्लब प्रेसिडेंट प्ले बटन दबाता है। ये टिकटॉक की एक सीरीज है जो क्लब के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। फिर वो ग्रुप्स में बढ़ गए। एक ग्रुप हॉलवे में जाता है और टीच मी हाउ टू डगी पर एक लोकप्रिय डांस सिखाता है। कैमरामैन छात्र फोन लाता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है और वो पूरी दुनिया के लिए एक पोस्ट पर क्लिक करता है। ये ड्रामा क्लब की तरह है लेकिन संभावित ग्लोबल ऑडियंस के साथ। लेकिन यहां तक कि जब टीन्स कैपिटल हिल पर भी टिकटॉक को अपना लेते हैं तो अमेरिकी सेनेटर ऐप की आसमान छूती लोकप्रियता को किसी बजते अलार्म की तरह देखता है। अक्टूबर 2019, सेनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मैनुचिन को एक पत्र लिखा। अमेरिकी सरकार ने टिकटॉक की जांच करने को कहा। उनका कहना है कि चाइनीज सरकार द्वारा सेंसिटिव समझे जाने वाले कंटेंट को सेंसर करने के लिए टिकटॉक जैसे ऐप का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है और उनका दावा है कि टिकटॉक के हाल ही में म्यूजिकली को अपने में मिलाने से नेशनल सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। वो लिखते हैं, दुनिया भर में फ्री सोसाइटीज के अंदर सूचनाओं को सेंसर करने के लिए चाइनीज सरकार के नापाक प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए भविष्य में ये गंभीर चुनौतियां होंगी। ये आपके लिए एक बुरा सपना है जो यूएसए में और फलने फूलने पर भरोसा कर रहा है, इसका सबसे बड़ा मार्केट। तो यू चाम ऑफेंसिव हो जाते हैं, एक शानदार न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल में दिखाई देते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि अगर चीन के नेता शी जिनपिंग ने उनसे डेटा सौंपने के लिए कहा तो वो ऐसा नहीं करेंगे। जोंग अमेरिकी नेताओं को टिकटॉक की खुद पर निर्भरता की बात मानने के लिए बेताब है कि उनका डेटा उनके हाथों में सुरक्षित है। लेकिन टिकटॉक की प्रेस और अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के साथ समस्याएं बस अभी शुरू ही हुई हैं। अक्टूबर 2019, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में मरून कार्पेट्स और गहरे रंग के लकड़ी के पैनलों के साथ एक बड़ा ऑडिटोरियम ज़करबर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से सजे पोडियम के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने काले रंग का स्वेटर पहना हुआ है, बाल छोटे छोटे कटे हुए।
आज आप सभी के साथ जॉर्ज टाउन में आकर बहुत अच्छा लगा। बड़े पैमाने पर खुद को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाले लोग दुनिया में एक नई तरह की ताकत है।
फेसबुक हाल ही में कई विवादों में रहा है। राजनेताओं और अधिकारियों ने दुष्प्रचार फैलाने में इसकी भूमिका की आलोचना की।
मैं लोगों की चिंताओं को समझता हूं कि कैसे टेक प्लेटफॉर्म्स में सेंट्रलाइज करने की ताकत है, लेकिन मैं वास्तव में मानता हूं कि इससे भी बड़ी कहानी यह है कि इस प्लेटफॉर्म ने इसे सीधा लोगों के हाथों में देकर कितना डिसेंट्रलाइज किया।
ज़करबर्ग ने अपने प्लेटफॉर्म चैंपियंस फ्री स्पीच को बरकरार रखा है और इसे साबित करने के लिए कंपनी ने अभी घोषणा की है कि वो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स के विपरीत राजनीतिक विज्ञापनों या उदारवादी कमेंट्स की फैक्ट चेकिंग नहीं करेगी। ज़करबर्ग नहीं मानते कि फेसबुक का काम कोई सच्चाई का ठेकेदार बनना है। उन्होंने सोचा कि उन्हें ये आक्रामक हालात में लाकर खड़ा कर देगा, लेकिन अब उन्हें हर तरफ से फटकार लगाई जा रही है, क्रिटिक्स सहित, जो दावा करते हैं कि वो अभद्र भाषा और दुष्प्रचार को एक मंच दे रहे हैं। इसीलिए वो एक रेयर पब्लिक स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। ज़करबर्ग ने अपना गला खंखारा। वो ऑडिटोरियम से भरे 700 छात्रों को देखते हैं जिनमें से कुछ के पास उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अपने आईफोन है।
मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हमें फ्री एक्सप्रेशन की आजादी के लिए खड़ा रहना चाहिए।
फिर आर्ट ऑफ वॉर से सीधा एक चाल से वो हमले पर आ जाते हैं। वो एक कंपनी पर अपनी उंगली उठाते हैं जिसके लिए वो कहते हैं कि वो ठीक उल्टा करती है, ByteDance।
चीन एकदम अलग वैल्यूज पर ध्यान देकर अपना खुद का इंटरनेट बना रहा है और अब ये इंटरनेट के अपने नजरिए को और देशों में पहुंचा रहा है।
ज़करबर्ग उन रिपोर्ट्स का जिक्र करते हैं कि हाल ही में हांगकांग के विरोध के प्रदर्शनों को टिकटॉक पर सेंसर किया गया था, एक आरोप जिससे ByteDance ने इनकार कर दिया। वो फेसबुक को लोकतंत्र के समर्थक टूल के तौर पर रखते हैं,
जबकि हमारी सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप हर जगह मजबूत इंक्रिप्शन और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के कारण प्रदर्शनकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाती है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे चीनी ऐप टिकटॉक पर इन विरोधों का उल्लेख सेंसर किया गया, यहां तक कि यूएसए में भी।
वो एक ताकतवर तंज कसने वाला सवाल के साथ बात को खत्म करते हैं। क्या यही वो इंटरनेट है जो हम चाहते हैं? ज़करबर्ग के नजरिए को अनदेखा नहीं कर सकते। वो फेसबुक को एक अच्छी अमेरिकी कंपनी के तौर पर और टिकटॉक को एक खराब चाइनीज कंपनी का स्थान दे रहे हैं। आजादी को एक बाहरी खतरा। बीजिंग में जोंग झुंझुलाट के साथ ज़करबर्ग के भाषण की रिपोर्ट पढ़ते हैं। वो फोन पर अपने हेड पीआर से रिपोर्ट लेते हैं।
ज़करबर्ग सिर्फ क्रिटिसिज्म से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा है। हमें सेंसरशिप से इनकार करते हुए एक बयान देने की जरूरत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो फिर से कॉपी करने के बाद ऐसा करेगा। पहले लासो और अब क्लिप्स।
जोंग एक नए फीचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे इंस्टाग्राम क्लिप्स के नाम से टेस्ट कर रहा है। यूजर्स एक साथ क्लिप काट कर और म्यूजिक जोड़कर वीडियो एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल टिकटॉक की तरह। जॉर्ज टाउन में ज़करबर्ग के कॉमेंट्स जले पर नमक छिड़कने जैसे।
मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा।
बाइट डांस के एक स्पोक्स पर्सन ने रिपोर्ट्स को एक बयान भेजा जिसमें जोर देकर कहा गया कि चाइनीज सरकार को कंटेंट को सेंसर करने के लिए टिकटॉक की जरूरत नहीं है। हमने साफ तौर पर कहा है कि ये झूठे आरोप है। मार्क ज़करबर्ग का एक कॉम्पिटिटर पर दोबारा जांच करने को कहना एक घटिया कोशिश है क्योंकि वो उसकी नकल करने में नाकाम रहे हैं। जोंग को ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि अमेरिकी सांसद भी ज़करबर्ग के इस नजरिए को नहीं मान रहे हैं। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन ने एक तीखा ट्वीट किया जिसमें फेसबुक पर गलत सूचना और सीधा झूठ फैलाकर लाखों रुपए बनाने का आरोप है। मार्क ज़करबर्ग का आज का भाषण दिखाता है कि उन्होंने 2016 से कितना कम सीखा और 2020 के चुनाव को संभालने में फेसबुक कितना पीछे है। उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के कैंपेन संविधान को उसकी बॉटम लाइन की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ज़करबर्ग को कोसता है। अब तक ज़करबर्ग ने केवल मामलों को बदतर बनाया। उन्होंने राजनेताओं को और अपने चीफ कंपेटिटर को भी नाराज किया। जोंग बिल्कुल नहीं चाहते कि इससे एक दूर देशों की राजनीतिक लड़ाई में फंसी दो टेक कंपनीज के बीच लड़ाई के तौर पर पेश किया जाए। दुर्भाग्य से जोंग के लिए इससे बच पाना मुश्किल है। नवंबर 2019, जोंग बीजिंग में अपने ऑफिस में। ये कुछ तनाव भरा हफ्ता रहा है। जैसे ही टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों की संख्या में विस्फोट है वैसे ही अमेरिकी राजनेताओं द्वारा जांच शुरू हो जाती है। दो अमेरिकी सांसदों ने नेशनल सिक्योरिटी जांच की मांग की। वो चिंतित हैं कि टिकटॉक यूजर्स डेटा और सेंसर कंटेंट इकट्ठा करता है। जोंग चिंतित हैं कि अब रेगुलेटर्स आगे क्या कर सकते हैं। टिकटॉक के सीईओ एलेक्स जू ने जोंग को एक चिंताजनक अपडेट कॉल किया।
हमने अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी से सुना है।
क्या
ये गवर्निंग बॉडी है जो यूएसए और विदेशी कंपनियों के बीच सौदों की देखरेख करती है?
जोंग अपना चश्मा उतार कर अपनी आंखें मलते हैं।
ठीक है, क्या हो रहा है?
वो म्यूजिकली के बाइट डांस में मिलने की जांच कर रहे हैं।
जोंग की भौहें चढ़ जाती हैं।
क्यों, ये तो 2 साल पहले हो चुका है।
हाँ, लेकिन जब डील हुई तो हमें उनसे मंजूरी नहीं मिली, इसीलिए अभी भी वो इसकी जांच कर सकते हैं। उनके पास अधिकार है क्योंकि हम अमेरिकी यूजर्स के डेटा तक पहुंचते हैं।
जोंग हताश है। उन्हें लगता है कि बाइट डांस चीन और यूएसए के बीच बढ़ते तनाव में फंस रहा है। ज़करबर्ग के भाषण ने भी मदद नहीं की। अगर वो गवर्नमेंट बॉडी इस डील को यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक मानती है तो वो बाइट डांस को म्यूजिकली बेचने के लिए बाध्य कर सकती है। एक ऐसा कदम जो यूएसए में टिकटॉक को कुचल देगा। म्यूजिकली और उसके यूजर्स के बिना टिकटॉक यूएसए में कहीं का नहीं रहेगा। जोंग ने अमेरिकी टीन्स के साथ आगे बढ़ने के लिए म्यूजिकली को खरीदा। डील को रद्द करना बाइट डांस के लिए एक तबाही होगी। और यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये एक पुरानी मिसाल है। इसी कमेटी ने हाल ही में एक अन्य चाइनीज कंपनी को उसके डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए मजबूर किया। कमेटी ने दावा किया कि ग्राइंडर की ओनरशिप यूएस यूजर्स की संवेदनशील निजी जानकारी को चाइनीज सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकती है। जोंग रिसीवर पकड़े बुरा समूह बनाते हैं।
हमें जरूरत है कि अब तुम हमला करो। ठीक है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?
जोंग थोड़ी देर सोचते हैं।
वहां जाओ, बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ कुछ इंटरव्यू करो और इन्हें बार बार बताओ चाइनीज सरकार हमें सेंसर करने के लिए नहीं कहती है।
हमारे ऐप की कंटेंट पॉलिसी अमेरिका में एक टीम लीड करती है। लेकिन टिकटॉक का एक और घोटाला सामने आने वाला है जो उस दावे को सही ठहराने में बहुत मुश्किल बनने वाला है। लंबे काले बालों वाली एक टीनेज लड़की अपने फोन के कैमरे के सामने बैठी है। फोन सेल्फी मोड में है, उसके चेहरे तक रिकॉर्ड हो रहा है। वो एक आईलैश कलर निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू करती है। वीडियो टिकटॉक पर कई और मेकअप ट्यूटोरियल्स में से किसी एक की ही तरह शुरू होता है, लेकिन थोड़ी देर में सब बदल जाता है।
हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को लॉन्ग लैशेस पाने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने लैश कर्लर को पकड़ना है और बेशक अपनी लैशेस को कर्ल करना है, और फिर आप उन्हें नीचे रखने वाले हैं और अपने फोन का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि चीन में क्या हो रहा है, वो कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप लगा रहे हैं, निर्दोष मुसलमानों को फेंक रहे हैं।
टीनेजर बात करने लगती है कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। चीनी सरकार अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों को घेर कर नजरबंदी कैंपों में डाल रही है। ये इस्लाम की उनकी भक्ति को कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। इस एक्शन की मानवाधिकार समूहों ने हर तरफ आलोचना की है, लेकिन सरकार का कहना है कि कैंप्स सीधे साधे जॉब ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं। वीडियो शेयर किया जाता है और जल्दी ही लगभग आधा मिलियन लाइक्स बटोरता है, लेकिन फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। टीनेजर ने ट्विटर पर शिकायत की कि टिकटॉक ने उइगरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स इस कहानी को उठा लेता है। बीजिंग में जोंग न्यूज पढ़ते हैं और आह भरते हैं। ये बड़ी गड़बड़ है। वो टिकटॉक के सीईओ यू को फोन करते हैं।
हमें इससे इनकार करना पड़ेगा और कहेंगे कि हम इसकी जांच कर रहे हैं।
ठीक है यमिंग, मैं ऐसा ही करता हूं।
और भगवान के लिए उसका अकाउंट वापस चालू करो।
टिकटॉक एक ब्लॉग पोस्ट लिखता है जिसमें इनकार किया जाता है कि उन्होंने उसे सेंसर नहीं किया। कंपनी का दावा है कि उसके द्वारा पोस्ट किए गए एक अलग वीडियो के कारण उसके खाते पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें ओसामा बिन लादेन की एक इमेज शामिल थी। टिकटॉक की टेररिज्म पॉलिसी का उल्लंघन। उसका अकाउंट बहाल कर दिया गया, लेकिन इस घोटाले ने इसे पुख्ता कर दिया कि टिकटॉक में इमेज की समस्या। अगर उन्हें चीन के सेंसर के साथ एक एंटी फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाने लगा तो उन्हें नए यूजर्स को लुभाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2019 के अंत तक टिकटॉक लॉन्च के बाद से 1.4 बिलियन डाउनलोड के साथ 18 बिलियन की कमाई कर रहा है। इस तरह का पीआर खराब कंपनी को वैसे ही गिरा सकता है जैसे वो अपने ऑपरेटिंग अधिकार के लिए लड़ रहा है। जैसे जैसे टिकटॉक ऊपर उठ रहा है, इंस्टाग्राम का स्तर भी ऊपर जाने वाला है। क्या टिकटॉक में एक्स फैक्टर है, वो खास चीज जो ऐप को अजय बनाती है? ये एक $1 बिलियन सवाल है। अगले एपिसोड में एक ग्लोबल पैंडेमिक ने टिकटॉक को सुर्खियों में ला दिया और इंस्टाग्राम ने एक नए फीचर के साथ वापसी की जो 1 बिलियन यूजर तक पहुंच जाता है, लेकिन टिकटॉक को एक नए दुश्मन से जूझना पड़ेगा, अमेरिका का सबसे बड़ा ऑफिस।
वंडरी से ये बिजनेस वॉर्स की टिकटॉक बनाम इंस्टाग्राम का चौथा एपिसोड है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप आर्या। नेटली रुबे हमेद ने यह कहानी लिखी है। कैरन लोब हमारी सीनियर प्रोड्यूसर और एडिटर हैं। इसे एडिट और प्रोड्यूस किया है एमिली फ्रॉस्ट ने। साउंड डिजाइन किया है काइल रेंडल ने। केट यंग हमारी एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। एमिली कंकल हमारी मैनेजिंग प्रोड्यूसर हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जेसिका रेडबर्न, जेनी लोअ बैकमन और मार्शल लुई। वंडरी से अर्नान लोपेज द्वारा निर्मित।